मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 16 जून 2017 के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के विषय पर बात करना शुरू करूं, दो छोटी छोटी सूचनाएं आप सबके लिए हैं। पहली सूचना तो यह कि चूंकि आज शुक्रवार है तो मैं जनरली शुक्रवार को यह सूचना देता हूं कि शनिवार और रविवार को लाइफ मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं होगा, मंडे को फिर हम इस पर बात करेंगे। दूसरे यह मित्रों कि बहुत से इस स्टूडेंट्स के मेल आ रहे हैं प्रीति, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का नंबर जानने के लिए, जो कि हमारी काउंसलर हैं, और आप सबको यदि लाइव से संबंधित कोई समस्या हो या कोई सवाल पूछने हो तो आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। बहुत से पहले नंबर दिया गया था लेकिन हो सकता है कि नए स्टूडेंट फिर से मांग कर रहे हो, नए लोग फिर से मांग कर रहे हो, तो मैं आपको प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर दे रहा हूं। उनका नंबर है 9644624449। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। तो दोस्तों, आइए अब हम आज के विषय पर बात करते हैं। और आज के लिए मैंने विषय चुना है कि ठीक है, हम सबके अंदर गुण होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन गुणों का विकास कैसे किया जाए। जैसे कि कल मैंने आपसे बात की थी कि धरती में सुगंध होती है, लेकिन वह सुगंध बाहर कैसे आए ताकि लोगों को पता लग सके, वह लोगों को सुख पहुंचा सके। और सच पूछिए तो अपने होने को प्रमाणित ही न करे बल्कि सार्थक भी कर सके। तो डेफिनेटली मेरे अंदर बहुत से गुण हैं, लेकिन वो अंदर छिपे हुए हैं, उसका मैं उपयोग ही नहीं कर पा रहा हूं, न अपने लिए न दूसरों के लिए ही, तो फिर ऐसे गुणों का अर्थ भी क्या है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि मेरे अंदर गुण हैं और अवगुणों से मैं अगर अपने को बचा लेता हूं तो थोड़ा बहुत फायदा मुझे हो जाएगा, लेकिन इससे अधिक और कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा मानना है कि चीजों का होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम उन चीजों का इस्तेमाल करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत प्रसंग बताना चाहूंगा इस बारे में, जो महाभारत का प्रसंग है। और सामान्यतया जब हम महाभारत की बात करते हैं तो यह प्रसंग छूट जाता है। इनफैक्ट यह प्रसंग नहीं है, यह एक आत्मस्वीकृति है, और यह आत्मस्वीकृति है दुर्योधन की। होता क्या है, जब हम किसी कहानी किस्से के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में धारणा बन जाती है कि अच्छा, ये हीरो है, आदर्श व्यक्ति होगा, यह खलनायक है, यह बेकार आदमी होगा, है ना, यह है एंटी हीरो है, यह बुरे काम करता होगा। हमारे दिमाग में यह धारणा बन जाती है, वहां हम थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। हमसे मिसिंग यह होती है कि हम ये नहीं देख पाते कि अगर ये अच्छा आदमी है तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बुरा आदमी छिपा होगा, भले ही वह शांत बैठा हुआ है या छुपकर बैठा हुआ है। अगर कोई बुरा आदमी है तो बुरा आदमी के अंदर भी एक अच्छा आदमी मौजूद होगा। यह बात अलग है कि वह एक्टिव नहीं है, वह चुपचाप छुपकर सिर छुपाकर बैठा हुआ है। अब होता यह है कि अच्छे आदमी के अंदर उस बुरे आदमी को दबाकर रखा जाए तो वह अच्छा आदमी बन जाएगा, लेकिन कभी कभी होता यह है कि वह बुरा आदमी भी अपना सिर उठाने लगता है तो पता लगता है कि उन थोड़े समय के लिए वह आदमी हमें बुरा दिखाई देने लगता है, लेकिन बहुत जल्दी वह उसकी गर्दन फिर से मरोड़ देता है या उसके सिर को दबा करके कहता है कि चुप बैठो। समाज में भी आप देखते हैं कि ऐसा होता है, ठीक यही स्थिति उस बुरे आदमी के साथ भी होती है। ऐसा नहीं है कि वह बुरा आदमी दिमाग से पागल है, उस बुरे आदमी के अंदर भी सोच है और वह अच्छे और बुरे के बारे में जानता भी है, लेकिन उसके साथ मुश्किल ये हो गई है या उसने अपने साथ मुश्किल ये कर ली है कि वो अच्छे को अपना नहीं पाता और बुरे को छोड़ नहीं पाता। तो ऐसा होता कैसे है? तो मित्रों, इसके बारे में दुर्योधन की एक बहुत खूबसूरत आत्म स्वीकृति महाभारत में है, और मुझे लगता है कि ऐसी बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम व्यक्ति की सच्चाई को जान सकते हैं, जो कह लीजिए व्यक्ति के यथार्थ को जान सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपना एक तरफा सोचते चले जाते हैं। दुर्योधन बुरा ही बुरा था, अर्जुन अच्छा ही अच्छा था, इस तरह की धारणाएं बनती हैं, जो मुझे लगता है कि एक संपूर्ण और सही धारणा नहीं है, और यही हमसे चूक हो जाती है। एक जगह दुर्योधन ने कहा है और बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। देखिए यहां जो धर्म और अधर्म की बात कह रहे हैं दुर्योधन, जो कह रहा है वो अच्छे और बुरे की ही बात कह रहा है, सही क्या है और गलत क्या है इसी की बात कह रहा है। उस समय इसे ही धर्म और अधर्म कहा जाता था। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, मैं यह भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है और अधर्म से मेरी विवृत्ति नहीं होती है, यानी कि धर्म में मैं लग नहीं पाता हूं और अधर्म से मुझे छुटकारा नहीं मिल पाता है, मैं इसे छोड़ नहीं पाता हूं। देखिए दुर्योधन जिसे हम इतने बड़े खलनायक के रूप में जानते हैं, उसको भी इस बात की जानकारी है कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसे ही वो धर्म क्या है, अधर्म क्या है कहता है। लेकिन क्या कारण है कि वो धर्म का विकास नहीं कर पा रहा है, अब हम इसी पर आते हैं, और वो अधर्म को छोड़ नहीं पा रहा है, आखिर क्या कारण है। मित्रों इसके लिए चाहे आप समाजशास्त्र उठाकर देख लें, चाहे आप मनोविज्ञान उठा करके देख लें, चाहे आप जीवन को यूं ही विस्तार करके देख लें, जीवन पर निगाह डालकर देख लें, मुझे लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वह होता है वातावरण। वातावरण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं प्रकृति के सिद्धांत को मानकर चलता हूं। आप पूरी प्रकृति में देखिए तो प्रकृति में वही चीजें वहां वहां पैदा होती हैं जो वहां के वातावरण के अनुकूल होती हैं। वातावरण के हिसाब से वहां सारी चीजें मौजूद है। अगर आर्टिफिशियल तरीके से कोई चीज वहां उगाई बनाई नहीं गई है तो हमारे समाज का भी एक वातावरण है, हमारे मनोविज्ञान का भी एक वातावरण है जिसमें हम सोचते हैं, समझते हैं और हमारा दिमाग विकसित होता है, हमारे संस्कार बनते हैं। अब यूं तो आप देखें तो दुर्योधन हो या अर्जुन हो, वातावरण तो एक ही था, एक ही परिवार था, एक ही गुरु द्रोणाचार्य थे, राज शिक्षा देने वाले एक ही भीष्म पितामह थे, सलाहकार विदुर थे, फिर ये दोनों में इतना अंतर कैसे हुआ। मित्रों यहां वातावरण को थोड़ा सीमित कर दीजिए, थोड़ा सा समेट लीजिए, उसका थोड़ा सा छोटा रूप ले लीजिए तो वो फिर आकर टिकती है संगति पर, कि आपकी संगति कैसी है। इसीलिए भारत में संगति को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, बहुत ज्यादा, कि जैसी हमारी संगति होगी वैसी ही हमारी प्रवृत्ति होगी। इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी हम अपने लिए वैसे ही संगति चुनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह बात उतनी सही नहीं है, यह बात अपने आप में सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। कभी कभी यह लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी प्रवृत्ति तो बहुत अच्छी है लेकिन किन्हीं कारणों से हम गलत संगति में पड़ जाते हैं, परिस्थितिवश पड़ जाते हैं और फिर हमें छुटकारा नहीं मिल पाता, या वो लोग नहीं छोड़ना चाहते, या यूं कह लीजिए कि हम ही उसे नहीं छोड़ना चाहते, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में यही होता है कि जो हमारी प्रवृत्ति होती है उसी के अनुकूल हम अपने लिए संगति चुनते हैं। देखिए अब संगति में आप बहुत विस्तार दे सकते हैं, मैं कहां रहूंगा ये, मैं किस कॉलोनी में जाऊंगा ये, मैं कहां पढ़ूंगा ये, अगर चयन की सुविधा मुझे है तो कौन मेरे दोस्त होंगे, कौन मेरा जीवन साथी होगा, कौन मेरा सलाहकार होगा, ये सारी की सारी चीजें संगति के अंदर ही आती हैं। संगति का मतलब आप कोई कीर्तन भजन और प्रवचन वाले संगति को मत लीजिएगा, संगति का मतलब जिनके साथ मैं रहता हूं, बस सीधी सी बात है। आप कह सकते हैं महफिल, दोस्त, जो भी आप कहना चाहें। तो मित्रों यही वह बात थी जो दुर्योधन और अर्जुन को अलग करती थी। दुर्योधन के मित्र कौन थे, दुर्योधन के सलाहकार कौन थे, दुर्योधन के सलाहकार थे कर्ण, और अर्जुन के सलाहकार कौन थे, अर्जुन के सलाहकार थे कृष्ण। और मजेदार बात यह है कि कृष्ण और कर्ण दोनों में क है, यानी कि नाम राशि तो दोनों की एक ही है लेकिन दोनों के चरित्र में बहुत फर्क है। अब आप देखिए कि ये जो कर्ण है, बेसिकली कर्ण का चरित्र प्रतिस्पर्धा का चरित्र है, प्रतिशोध का चरित्र है, वह अर्जुन से बदला लेना चाहता है। मैं महाभारत की कथा पर नहीं जा रहा हूं, उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो गया कि मैं अर्जुन से बदला लूंगा, और अर्जुन से बदला लेने के लिए वो दुर्योधन को ऐसी ऐसी ही सलाहें देता है जो अर्जुन से बदला लेने में मदद कर सके, वो कभी समझौते की सलाह ही नहीं देगा। और दुर्योधन कर्ण को अपना सबसे प्रिय मित्र और सबसे अच्छा सलाहकार मानता है, वो तो ये कहता है कि कर्ण मेरे लिए इतना त्याग कर रहा है। अब सीधी सी बात है कि जब सलाहकार ऐसा है तो अधर्म से मुक्ति मिल ही नहीं सकती और धर्म की तरफ वो जा ही नहीं सकता। जबकि दूसरी ओर अर्जुन के जो सलाहकार हैं वो हैं कृष्ण, कृष्ण जो बहुत व्यावहारिक हैं, जो महाभारत की रचना ही केवल धर्म की स्थापना के लिए करते हैं। उनका उद्देश्य सीमित नहीं है कि अर्जुन जीत जाए, पांडवों का राज्य स्थापित हो जाए, उनकी स्थापना से उनका जो उद्देश्य है वो सीमित नहीं है। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना, और इसके लिए वो अर्जुन को आधार बनाते हैं। उनको मान करके चलता है कि जो पांडव वंश का अगर शासन हो गया तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो बड़े उद्देश्य को लेकर चलते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो अर्जुन को उसी तरह की सलाह देते हैं, और नतीजा ये होता है कि अर्जुन अधर्म की तरफ नहीं जा पाता और धर्म को छोड़ नहीं पाता। आप देखते हैं कि जब भी धर्म को छोड़ने की बात होती है तो कृष्ण से वो तर्क करते हैं, अर्जुन भी तर्क करते हैं और युधिष्ठिर तो करते ही हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं। फिर कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि इसको समझने की कोशिश करो, एक ही एंगल से मत देखो, इसको कई एंगल से देखो तो सच पता लगेगा, और फिर वो दोनों स्वीकार कर लेते हैं। तो मित्रों, यहां जो एक स्थापना आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं जो करना चाह रहा हूं वो यह कि हम अपने जीवन के लिए किसे चुनते हैं, चाहे वह जीवन साथी के रूप में हो, चाहे वह हमारे मित्र के रूप में हो, चाहे वह हमारे सलाहकार के रूप में हो, हमारे धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा उसका रोल हमारी लाइफ में होता है। अगर वह सब कुछ अच्छा है तो हमारे अंदर के गुणों का विकास होने लगता है, और अगर वह सब कुछ विपरीत है तो बट नेचुरल है कि गुणों का नाश होने लगता है और उसके स्थान पर जो अवगुण हैं उनका विकास होने लगता है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब 2 दिनों के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।